ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से छठा स्कंद भागवतम का अध्याय 12। इस अध्याय का नाम है वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु। श्लोक संख्या 8। लोकः स्वपाला यस्य इमे श्वसन्ति विवसा वसे द्विजा इव सीचा बद्धा सह कालः इह कारणम्। लोका सपाल यस्य मे स्वसन्ति विवसा वसे द्विजा इव सिचा बद्धा सकाल इह कारणम्। लोकः विभिन्न लोक, स्वपाला अपने प्रमुख लोकपाल या अधिपतियों सहित, यस्य जिसका, इमे ये सब, सस्वंति सांस लेते हैं, जीते हैं, विवसा नितांत आश्रित, वसे बस में, द्विजा पक्षी, इव सदृश, सिचा जाल के द्वारा, बद्धा बंधे हुए, सह वह, कालह काल समय, इह इसमें, कारणम कारण है। अनुवाद तात्पर्य भक्तिविनाम स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त लोकों के प्रमुख लोकपालों सहित इस ब्रह्मांड के समस्त लोकों के समस्त जीव पूर्णतः भगवान के वश में हैं। वे जाल में पकड़े गए उन पक्षियों के समान कार्य करते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य, सूरों तथा अथरों में यह अंतर है कि सूर जानते हैं कि श्री भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, जबकि असुर भगवान की परम इच्छा को नहीं समझ सकते। इस युद्ध में वृत्रासुर वास्तव में सूर हैं और इंद्र असुर। कोई भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणी श्री भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है। अतः विजय तथा पराजय मनुष्य के कर्म फलों के अनुसार ही आती है। इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर हैं, कर्मणा दैव नित्रेण। चूंकि हम अपने कर्मों के अनुसार भगवान के निर्देश के अंतर्गत कार्य करते हैं, अतः ब्रह्मा से लेकर एक तुच्छ चिट्ठी तक कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हम जीते या हारे, किंतु परमेश्वर तो सदैव विजयी रहता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य उसके निर्देश में कार्य करता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे भूतैर्महद्वीयै मा पुरो विभो निर्मायसे ते अदमूषु पुरुषं भुक्ते गुणां षोडशषोडशात्मकं सोलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादे सुखकाज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सब लोग सुनते आ रहे हैं वृत्रासुर और इंद्र के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है उसके विषय में, कि किस प्रकार से इंद्र जिस वज्र को प्राप्त किए थे वृत्रासुर का वध करने के लिए, वह वज्र वृत्रासुर के प्रहार से इंद्र के हाथों से छूट करके गिर पड़ा। और वह गिरा भी कहां पर? वह गिरा वृत्रासुर के चरणों के पास। ये भी भगवान का क्या विधान है। वज्र कहीं गिर सकता था, उनके चरणों के पास ही क्यों गिरा? वृत्रासुर पूर्व जन्म में एक भक्त थे, भगवान शंकरषण देव के उपासक थे, और महान गुरु नारद जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे। वो कथा आगे आएगी। लेकिन भगवान की भी एक इच्छा थी जिससे उसे उन्हें किसी प्रकार से, जब परिभ्रमण कर रहे थे भगवान शिव और माता पार्वती को देखे एक ऐसे परिस्थिति में बैठे हुए जो कि एक सज्जन व्यक्ति से उपेक्षित नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती को अपने जंघे पर बैठाए थे और वहां ऋषियों के बीच में हरि कथा कह रहे थे। भगवान शिव तो अपने इंद्रियों पर बस किए हुए हैं, उन्हें उसका कोई असर नहीं था, लेकिन वृत्रासुर पर असर जरूर पड़ा और इसको देख करके वृत्रासुर जो महाराज चित्रकेतु थे उन्हें अच्छा नहीं लगा तो वे बोल बैठे और उन्होंने कह दिया कि भगवान शिव जो सबके पूजनीय हैं एक सामान्य पुरुष के समान इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, जब बड़े लोग ऐसा व्यवहार करने लगेंगे तो छोटे लोग क्या करेंगे। इस संसार में अनुसरण करने की प्रवृत्ति बड़ी कम है और अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए जो बड़े लोग हैं उन लोगों को अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिससे कि छोटे लोग उनका यदि अनुसरण भी करना चाहें तो कर सके। मंदिर हो या समाज हो, उसके जो श्रेष्ठ लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिस व्यवहार से लोग अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो भगवान शिव एक महाजन हैं और चित्रकेतु महाराज बोल बैठे तो माता सती से रहा नहीं गया और वो भी उन्हें, माता पार्वती भी उन्हें श्राप दे बैठी। जब श्राप दी तो वहां भी महाराज चित्रकेतु अपना वैष्णवता दिखाए और वहां भी उन्होंने बड़ा सुंदर प्रवचन किया। भगवान शिव बड़े गदगद हो गए उन प्रवचन को सुन करके। वहां पर भी वे अनासक्त थे, आसक्त नहीं थे। जो श्राप दिया गया कि तुम आश्रिक व्यवहार कर रहे हो इसलिए हे बेटे हे पुत्र जाओ तुम असुर बन जाओ, तो महाराज चित्रकेतु भी कहे कि आपने हमको बेटा संबोधित किया है तो आप मेरी माता हो, तो माता जो करती है बच्चों के कल्याण के लिए ही करती है, उसका नाम ही है माता, जो किसी प्रकार का दुख ना दे, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण होगा। और जिसके चलते उन्होंने हाथ जोड़ करके और उनके श्राप को स्वीकार किया। भगवान शिव गदगद होकर के माता पार्वती से बतलाए हैं वैष्णवों का गुण और उसमें से उसी बात में से कहते हैं नारायण परासर्वे न कुतस्तस्न विद्यते सर्ग अपवर्ग नरकेशु। जो नारायण परायण हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हें किसी से डर नहीं है, चाहे वो स्वर्ग में जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे असुर वृत्ति को ही धारण कर लें, उनके लिए सब कुछ समान है। कहा जाता है जो ढेंकी होती है, ढेंकी आप लोग जानते हो, कितने लोग जानते हो ढेंकी, तो हाथ उठाओ, तो नान कूटने वाला ना, यदि ढेंकी स्वर्ग में भी जाए तो क्या करेगा, नाने कूटेगा ना। तो वैसे ही भक्त लोग कहीं भी जाए वहां जाकर भगवान नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बल्कि विकट परिस्थितियां जो होती है वह भक्ति करने के लिए अच्छा होता है। आसान परिस्थितियों में हम इजी ले लेते हैं, लेकिन विकट परिस्थितियां में सब लोग भजन करते हैं। सामान्य लोग भी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सब लोग दुख में सुमिरन करते हैं। माता कुंती तो कहती है कि ऐसी परिस्थितियां आती रहे हमेशा, विपदा संतु तास्या तत्र तत्र जगत गुरु है जगत गुरु, ऐसी विपत्तियां आती रहे जिससे कि आपका चिंतन हो सके। तो हमें उसे घबराना नहीं चाहिए। मैं जानता हूं ये 2 डिग्री या माइनस डिग्री या 0 डिग्री वृंदावन में चला गया था, एक तरह से परिस्थितियां हैं। मैं कानपुर में भक्तों से कह रहा था, कुछ लोग मंगला आरती नहीं आ पाए थे, मैं भी वैदेवी आज नहीं आ गएगा। कल ही मीटिंग किया था डिपार्टमेंट है लोगों से और कहा था मंगला आरती आने के लिए, लेकिन भगवान ने काल के बस में सब लोग हैं। मैं अपना अलार्म लगाया लेकिन मोबाइल में है डन करना, वो डन करना भूल गया। मोबाइल में लगाया 3:15 का अलार्म, लेकिन डन करना जो था वो नहीं किया, और जब उठा तो 4:30 बज गया था। तो एनीवे 4:45। तो मैं कह रहा कि कोई परिस्थिति हो लेकिन मोबाइल की बात हो रही थी, परिस्थिति कोई हो भक्ति हमें करनी चाहिए। ये जाड़ा गर्मी बरसात ये सब आता है जाता है। भगवान हम लोगों के लिए बड़ा पॉजिटिव सलाह दिए हैं भक्तों के लिए, कहते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायन नित्यं तांत तेजस्व भारत नित्य, नित्य निरंतर आता रहता है सुख दुख सुख दुख। इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए बल्कि सिंपली सहन करना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं उन माताओं का जो भोजन बनाती है, जो स्त्रियां भोजन बनाती है चाहे वो जाड़ा का दिन हो चाहे गर्मी का दिन हो वो भोजन बनाती है। वो नहीं कर, आजकल तो गैस वाला चूल्हा हो गया है, पहले जमाने में वो तो लकड़ी और गोइठे से भोजन बनाना पड़ता था चूल्हे पर। तो वो नहीं कहती है कि जाड़ा के दिन मुझे भोजन बनाना अच्छा लगता है, माता जी लोग बात सही है ना, थोड़ा गर्मी रहता है जाड़ा के दिन में, लेकिन वो नहीं कहती अरे गर्मी के दिन मैं भोजन नहीं बनाऊंगे क्योंकि बहुत गर्मी लगता है, नहीं, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो वो भोजन बनाती है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार से स्नेह है प्यार है, उनके लिए सहन करती है। ठीक वैसे ही यदि हमें भगवान के प्रति प्यार है गुरु के प्रति स्नेह है तो हमें मंगला आरती हो क्लास हो पूजा हो जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तांत इतिचस्व भारत सहन करें। मैं उदाहरण दिया ढेंकी कहीं जाए धाने कूटेगा, वैसे ही हम कहीं भी रहें किसी परिस्थिति में रहें हम भगवत भजन न छोड़ें। यही बात भगवान शिव जो एक महाजन हैं उन्होंने यह बात बतलाई माता पार्वती के माध्यम से हम लोगों को। ये पार्वती जी को तो केवल शिक्षा बात कहे कह दिए, लेकिन शिक्षा था हम लोगों के प्रति भक्तों का क्या गुण होता है। तो हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों में कितने भक्त कहते हैं हम तो अभी भक्त बने ही नहीं हैं तो हमें ऐसा गुण क्यों आएगा। भक्त नहीं बने हैं लेकिन भक्त बनना चाहते हैं ना, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए इन कार्यों को। तो वे महाराज चित्रकेतु माता पार्वती के श्राप से वृत्रासुर बने थे। वृत्रासुर उस शरीर में थे लेकिन फिर भी पूर्व जन्म में भजन किए थे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो भक्ति कर लेता है उसके भक्ति का विनाश नहीं होता है। हो सकता है कि जब जिस शरीर में है शरीर का तो प्रभाव पड़ेगा ही, तो उस समय भले याद न आए लेकिन अंत समय याद आ जाता है। जैसे हम लोग भी हैं बचपन में जो जीवन यापन किए हैं, जवानी में भले भूल जाएंगे लेकिन बुढ़ापा आएगा तो बचपन याद आता है और बड़ा मधुर लगता है बचपन। एक कवि थे मैत्री शरण गुप्त, उन्होंने एक बार ये लिखा था कविता में कि यदि वह बचपन पुनः आ जाता, बचपन बड़ा सुंदर होता है, अच्छा होता है, टेंशन फ्री होता है, क्योंकि बाप माँ रहते हैं। जवानी में हम लोग भूल जाते हैं लेकिन बुढ़ापा में पुनः बचपन के समान हम लोग असहाय हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई एक इस प्रकार के उदाहरण है, जैसे गजेंद्र मोक्ष में देखा जाए, जो गजेंद्र थे उन्हें विस्मृति हो गई थी अपने शरीर के चलते, लेकिन जब मृत्यु का समय आ रहा था तो उन्हें स्मृति हुई और भगवान से वे प्रार्थना की। ठीक वैसे ही वृत्रासुर भी यहां पर अब अंतिम समय में है। ये वृत्रासुर की भगवत वाणी है, ये सुंदर बातें वृत्रासुर कह रहे हैं। तो मैं प्रारंभ किया था कि इंद्र का जो वज्र था, जो वृत्रासुर के वध के लिए था, वह वज्र वृत्रासुर के चरणों में गिर पड़ा। भगवान यहां पर बतलाना चाहते हैं एक बात कि इंद्र तुम हो बलवान, तुम हो, लेकिन हो स्वार्थी, अपने स्वार्थ के चलते, और देखो वृत्रासुर कितना महान है, तुम उनके शरण में जाओ। वज्र तो गया है, सौभाग्य है उस वज्र का, अब तुम भी उनके शरण में चले जाओ। तो वृत्रासुर कहते हैं इंद्र से कि घबराओ मत इंद्र, तुम आओ और अपने वज्र को उठा लो। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित, इंद्र का जब वज्र गिर पड़ा तो उसे बड़ा लज्जा हुआ। एक गिर पड़ना तो एक बात, और वो गिरा भी कहां पर? वृत्रासुर के चरणों के पास। तो इंद्र बड़ा विलज्जित हो गया। तो इंद्रो न वज्रम जगृहे, उसे अपने उठान नहीं चाहते थे, क्यों? विलज्जितम, एक तो लज्जा कारण था और डर भी लग रहा होगा कि जब अपने ठोंठी से मार दिया और इतना हो गया, यदि वज्र उठाने जाऊंगा तो कहीं मेरे गले पर ही पैर रख देगा, तब क्या होगा, तब तो कहीं का नहीं रहूंगा, और चाहे वज्र पर ही पैर रख दे तब क्या होगा। जो भी हो, लेकिन यहां पर वर्णन किया गया विलज्जित, इंद्र लज्जित हो गए। और इस प्रकार से चुतम सुहस्तात् अरिसन्निधौ पुनः, उन देखा इंद्र की उसके दुश्मन वृत्रासुर के चरणों के पास नदी वो वज्र पड़ा हुआ है। अब वृत्रासुर की भगवत्ता देखें हम लोग, कितने महान भक्त हैं वृत्रासुर के, असुर शरीर में भी कर्तव्य को भूले नहीं है। क्षत्रिय का एक नियम है, जब भी लड़ाई हो तो जिसके पास कोई अस्त्र न हो तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, निहत्थे पर प्रहार करना यह अत्ताइयों का काम है। हालांकि वृत्रासुर अपने को अतताई भी कहते हैं, लेकिन वो इंद्र के ऊपर प्रहार नहीं किए, चाहते तो अभी भी इंद्र को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वे समझ रहे थे कि अब करने से क्या फायदा, हाथ कटिए गया है, अब यदि मिल भी जाएगा इंद्र को ही राजा बने रहें, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि इंद्र ही राजा रहें, भगवान इसलिए इंद्र का भरण पोषण करते हैं। इंद्र कई एक बार गलती किए, फिर ही भगवान उनका रक्षा किए हैं। तो भगवान का विधान हम क्यों तोड़े? और वैसे भी इंद्र को क्या मिलेगा? उसका राज्य मिलेगा, लेकिन मुझे तो भगवत धाम मिलेगा। तो वृत्रासुर इंद्र के राज्य के अपेक्षा यदि लड़ाई में वृत्रासुर सफल हो जाते, विजय प्राप्त कर लेते, तो इंद्र का राज मिलता। लेकिन वह राज भी टेम्प्रोरी है। छीणे पुणे मर्तलोकम विसंति एवं त्रय धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। सब छीण होने वाला है, प्रलय के बाद सब खत्म होने वाला है। और पता नहीं बीच में भी आ सकते हैं, बहुत लोग इंद्र बने बीच में ही आ गए। तो इसलिए वृत्रासुर चूज किए। हम लोगों को भी ऐसी परिस्थितियों में चूज करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां आएगी, एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि हमको अमेरिका का वीजा मिल जाएगा। अमेरिका का वीजा और वृंदावन वास, दो सामने हैं, क्या चुनेंगे हम लोग? ये लोग बोल रहे हैं जो अमेरिका से रिटर्न होकर के आ गए हैं, या जो अब वृंदावन में रहना चाहते हैं, लेकिन जो अमेरिका जाना चाहते हैं उनसे पूछो थोड़ा, भले यहां नहीं बोलेंगे बाद में बोलेंगे। तो हम लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए। ये कृष्ण भजे इससे ही बड़ा चतुर, हम लोगों को बुद्धिमान होना चाहिए। च्वाइस यदि मिले हमको, दो में से किसको हम लें, तो हमें चुनना चाहिए जो हमें भगवान के नजदीक लाए। अमेरिका जाना भगवान के नजदीक नहीं लाएगा, भूल जाओ। मैं देखा हूं कि यहां के पुजारी लोग वृंदावन के अमेरिका में जाकर के होटल में मांस पका रहे हैं। एक नेपाली लड़का था मनोहर, मेरे समय पुजारी था, अच्छा लड़का था, पूजा करता था, बाल्टी बोर मंदिर में था, अभी जाकर के होटल में भोजन बना रहा है, मांस पका रहा है। धिक्कार है ऐसा जीवन, क्या फायदा? अपॉर्चुनिटी मिले तो वृंदावन रहो, भारत भूमि में रहो, प्रचार करो। यहां पर वृत्रासुर से एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दो अपॉर्चुनिटी था उनके पास, स्वर्ग का राज और भगवान का धाम। अपना प्राण त्याग करके वृत्रासुर अपने प्राण को दिए, किस लिए? भगवत धाम प्राप्त करने के लिए। ये शिक्षा प्रद कथाएं हैं, हम लोगों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए इसे। देखिए भगवत भक्तिमयी वाणी, यहां संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भक्ति, आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए, और लोग आ रहे हैं, प्रसाद से 5 मिनट पहले तक लोग आएंगे, चिंता मत करो, तो आप लोग आ जाइए। तो वृत्रासुर की भगवत वाणी यहां पर बताई जा रही है। तमाह वृतो हर आत आतत वज्रहो। तब वृत्रासुर ने हर इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम इस वज्र को उठा लो। जाहि सुशत्रुम नमिषाद कालह। अब तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, अब लज्जित मत हो, लज्जा छोड़ो। अरे वज्र मिला है वध करने के लिए, मेरा वध करने के लिए, कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा होगा जो कहेगा तुम वज्र उठाओ और मेरा वध करो? यदि हम लोगों को ऐसा चांस मिल जाए, कहीं लड़ाई हो रहा हो, किसी का रिवाल्वर गिर जाए हमारे पैर के नीचे, हम कहेंगे ऐसा कि रिवाल्वर उठाओ और गोली मारो मुझको? नहीं कहेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग शरीर से आसक्त हैं। वृत्रासुर शरीर में रह करके भी शरीर त्याग दिए थे और मोह नहीं रह गया था उस शरीर से। अब तो उन्हें भगवत वह याद आ रहा था जो संकर्षण देव का वे भजन किए थे, संकर्षण देव याद आ रहे थे, तो स्थिर हो गए थे वृत्रासुर अपने लक्ष्य में। जब वह लक्ष्य जो हमारे जीवन का है उसके विषय में हम कन्विंस हो जाएंगे तो देह के सुख सुविधा हमें हे लगेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य है, प्रभुपाद जी कहते हैं गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड है। यदि हम इसके विषय में कन्विंस हो जाए कि जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, तो देह के सुख सुविधा में हम लोग कभी नहीं पड़ेंगे। देह के सुख सुविधा में हम लोग पड़े हुए हैं क्योंकि हमें अभी तक विश्वास नहीं है। श्रद्धा है इसलिए हम भजन कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाए कि जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, तो देह और देह के प्रेम में हम कभी नहीं रचे बचेंगे। और यहां पर वृत्रासुर से हम देख सकते हैं। अब ये वृत्रासुर की भगवत वाणी है, भक्तिमयी वाणी जो वृत्रासुर यहां पर इन श्लोकों से प्रारंभ कर रहे हैं, श्लोक 7 से, और बिल्कुल शुद्ध सिद्धांत यहां पर बतला रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ के भोक्ता हैं। और वे कहते हैं कि लड़ाई भी यदि हो तो ये कोई निश्चय नहीं है कि सदैव किसी एक व्यक्ति का ही विजय होता है। लड़ाई के मैदान में एक क्रिकेट आजकल सब लोग जानते हैं ना, वो क्रिकेट वाले हारते हैं तो कहते हैं हाँ क्रिकेट तो होता ही है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, ये कहते हैं। वैसे ही लड़ाई, वैसे ही जीवन, कभी सुख कभी दुख कभी हार, ये द्वंद्वात्मक संसार है। वृत्रासुर इसको जानते हैं और वे कहते हैं कि हार और जीत ये दोनों जो है भगवान के हाथ में है। वही सृष्टि करते हैं, वही पालन करते हैं और वही संहार करते हैं। जन्मादृश्य तुन आदि तरतः, इसलिए आप इसके लिए चिंतित न रहो। वास्तव में संसार में जो लोग फंसे हैं, मैं तो कहता हूं उनका जीत कभी होता ही नहीं है, हमेशा उनका हार ही होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं बेफल, भगवान गीता में कर सती, उस संघर्ष में लगे रहते हैं। यदि जीत किसी की होती भी है तो वह केवल भक्तों की। किसी परिस्थिति में भक्त रहे, भक्त मतलब ये नहीं कि तिलक कंठी धारण कर लिया, लाल कपड़ा पहन लिया या उजला कपड़ा, वो भक्त, भक्त मतलब जो भक्ति करता हो, जो भगवान के सेवा में लगा हो नित्य निरंतर, वैसे भक्तों की भी, जैसे अर्जुन की, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयी भूति ध्रुवाय तिरुमतिर मम। यहां वृत्रासुर की विजय हो रही है, इंद्र की विजय नहीं हो रही है। इंद्र को क्या मिलने वाला है? एक छटा ज्यादा चीज नहीं मिलने वाला है, वो तो अपना अस्तित्व तो बचा रहा था इंद्र, यही ना। इंद्र को तो पुनः उनका घर मिल रहा था, उनकी कोठी मिल रही थी, उनका राज्य मिल रहा था, लेकिन वृत्रासुर को बहुत महान पद मिल रहा था, वह था भगवत धाम, अपने घर में वापसी मिल रही थी, यह है महानता। तो ऐसे सुख, ऐसा दुख जो हो तो मोल खरीद लेना चाहिए, पैसा देकर भी खरीद लेना चाहिए। ये दुख ही उसका मूल्य है तो चुका देना चाहिए, सहन करना चाहिए। और उसी क्रम में सर्वज्ञ आदम पुरुषम सनातनम कहते हुए कहते हैं, हे आदि पुरुष ही सब कुछ के कारण हैं, और काल के अनुसार ही सब कुछ होता है, स्थिति प्रलय और सृष्टि। और उसी काल का महिमा बताते हुए ये दो तीन श्लोकों में वृत्रासुर काल का भी बताते हैं। तो आज का श्लोक है, कहते हैं लोका सपाला यस्य इह, यह मतलब इस संसार में, इस भौतिक संसार में, इस चौदहों भुवन में, या इस देवी धाम में कह लीजिए, देवी धाम का ही बात कहते हैं। लोका सपाला, जितने लोक हैं, लोक लोकांतर, ऊपर नीचे और पृथ्वी लोक, सब लोगों, लोका बहुवचन, सपाला, लोक ही नहीं, लोक के जो पालन करने वाले हैं, ब्रह्मा से लेकर के चिटी पर्यंत तक जो भी पालन करने वाले हैं, ब्रह्मा पालन करने वाले हैं, इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि वे पालन करने वाले हैं। इस संसार में, भौतिक संसार में भारत है, यहां कुछ लोग पालन करने वाले हैं, परिवार में माता पिता पालन करने वाले हैं, इस प्रकार से जितने भी पालन करने वाले हैं, जितने भी पालक लोग हैं, कहते हैं लोका सपाला यस्य इस संसार में इमे शशांति विवसे बसई, वो लोग सांस ले रहे हैं लेकिन विवश होकर के, स्वतंत्रता पूर्वक सांस नहीं ले रहे हैं। सब लोग जेल में रह करके सांस ले रहे हैं, एक कैद खाना है ना, ये दुर्ग है जहां की सुपरिटेंडेंट है दुर्गा जी, ये जेल है और हम लोग यहां पर कैदी हैं। लगता है सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्वतंत्रता नहीं है। कभी कभी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो अब सांस मैं ले रहा हूं, लेकिन वो अभी सांस ले रहा है परतंत्र होकर के, स्वतंत्र नहीं है, विवश है। और उदाहरण यहां पर दिया गया है उस पक्षी का जो जाल में फंसी हुई है, जाल में फंसी हुई पक्षी है, द्विजा युवा सिचा बद्धा, सिचा जो जाल में बंधी हुई पक्षी है, सांस ले रही है, खा पी भी रही है, लेकिन कब उसका काम तमाम हो जाएगा उसे मालूम नहीं है। इस प्रकार से जाल की पक्षी, बड़ा सुंदर बात यहां पर कह रहे हैं, इतना कह दिया जाता कि सब लोग विवश होकर के, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब डिपेंडेंट है, विवश होकर के सांस ले रहे हैं, तो शायद हम लोग समझ नहीं पाते। तो हम लोगों को समझाने के लिए एक उदाहरण दिए हैं जिसको हम लोग दृष्टिगोचर कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं, जैसे जाल में फंसी हुई पक्षी, तो जाल का तो अंदाज लगा सकते हैं ना। अब संसार का अंदाज लगाना हो कि संसार एक जेल है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार इसकी दिशाएं हैं, जेल है तो जेल में बाउंड्री है, दिशाएं, हम उसका परिक्रमा कर सकते हैं, देख सकते हैं, संसार को कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए लिमिटेड रूप से एक उदाहरण दिए हैं हम लोगों को समझने के लिए, जैसे जाल, जाल तो हम देख सकते हैं, या पिंजरा, पिंजरा में एक तोता है, पिंजरा देख सकते हैं, तोता देख सकते हैं, पानी डालें, पानी पिएगा, खाएगा, जो कहो सब करेगा पिंजरे में तोता, वैसे ही जाल की पक्षी। हम लोगों का जीवन ठीक वैसे ही है, सकाल इह कारणम, और इसका कारण क्या है तो कहते हैं कि काल है, काल के चलते ही जितने लोग आए हैं, हम लोग कुछ दिन तक हैं, सो सांस, हम सांस ले रहे हैं, हम जीते हैं, सुसंति हम जी रहे हैं, लेकिन हमेशा जीने वाले नहीं हैं, कुछ समय तक जीने वाले हैं। इसका कारण क्या है? काल। यहां पर वित्रासुर काल कहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बात कहा गया है, लेकिन काल का अर्थ है भगवान। यहां ये समझना चाहिए, समय तो है ही, लेकिन समय भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान कहते हैं कालो अस्मि, मैं ही समय हूं। टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, मैं ही समय हूं। कलयति इति काल, जो सबको खत्म करता हो उसे काल कहते हैं। एक दिन था जब ये बिल्डिंग बना था, अच्छा लग रहा था, कितना भी रिपेयर करते जाएं, लेकिन काल उसे खत्म कर रहा है। ये देह, कितना भी हम उठ बैठ करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन डे बाय डे ये देह नष्ट हो रहा है। तो नष्ट होने का कारण जो है वह है काल। वही बात भगवान गीता में कहते हैं, मैं ही समय हूं जो सबको खत्म कर रहा हूं। कालो अस्मि, टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, वही बात यहां पर वित्रासुर कर रहे हैं। ऐसे अवंतिक ब्राह्मण वो काल को दुख का कारण नहीं बतला रहे हैं इस संसार में। यहां पर क्षय का कारण बताया गया है। क्षय का कारण क्या है? काल है। दुख का कारण भी काल है। कहते हैं समय आजकल हम लोग खराब चल रहा है, दुख होता है समय खराब चल रहा है, ये बहानाबाजी करने से खत्म नहीं होगा। कहते हैं नायम जनोमी सुख दुख हेतु, ये लोग हमारे सुख दुख के कारण है। न काल कर्म, न तो काल, न तो कर्म फल, न देवता न भूत। तो अंत कहते हैं कारण क्या है? मन। मन ही कारण है सुख और दुख चुनने का। तो हमारे पास स्वतंत्रता है उस जाल में बंधे रहकर भी। काल तो है ही, हम लोगों को नष्ट करने वाला है, आज नहीं तो खत्म, कल खत्म होने वाले हैं, लेकिन जितना दिन है उतना दिन च्वाइस हमारी है, हम चुने कि हम क्या करना चाहते हैं। कहा जाता है टाइम पास पास फॉर एवर, समय जो बीत जाता है कुछ भी करो नहीं आ सकता है। इसलिए समय भगवान का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। साक्षात भगवान है समय, और प्रतिनिधित्व यहां पर सूर्य के द्वारा किया जाता है। सूर्य काल के प्रतिनिधि हैं। सूर्य आते हैं, हमारे जीवन को छप 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 काट रहे हैं, चक्र के समान सूर्य का चक्र चल रहा है। तो जो भी समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, और सबसे अच्छा सदुपयोग है कि भगवान का भजन कर करके, भगवान में मन लगा करके, यथाशक्ति हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि ये जीवन भगवान की सेवा में ही लगा रहे सब प्रकार से। तब तो समय का सही सदुपयोग है, नहीं तो कैसे हो, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, अब चिड़िया खा गई है, पछताने से क्या फायदा, अब समय बीत गया और पछताने से क्या फायदा। तो जितना समय है ये मनुष्य देह मिला हुआ भजन करने के लिए, नहीं तो केवल पछतावा ही रह जाएगा। हरी हरी विपले जन्म गुआनो, मानुष जन्मा पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया भी सुखायनो। तो हमें मनुष्य जन्म प्राप्त कर करके भजन करना चाहिए। देखिए माया कितनी प्रबल है, हमारी आसक्ति कितनी प्रबल है कि शास्त्र दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, लेकिन हमारे भेजा में जब जाता ही नहीं है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हमको मरना भी है, उस दिन सीरियस हो जाएंगे। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम मरने वाले हैं। हम सब जानते हैं फिलोसफिकली कि हम मरने वाले हैं, हम देखते भी हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। हम मरते भी हैं, एवरी सेकेंड हम मर रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। हम अंतिम दिन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्राण प्रयाण समय क्या फायदा, जब तक से होश हवास है हमें चाहिए तत्परता पूर्वक भगवान का भजन करें। नित्य सत्यम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ता से इसका जतन करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को ये भक्ति मिली है, भक्तों की कृपा से हम लोगों को भक्ति मिली है। इस विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते हमको ये भक्ति प्राप्त हुई है। दृढ़ता से हमें चाहिए इसका रक्षा करना सब प्रकार से। श्रीपाद चतुर महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी से, माली हैया करते ही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जले कर सिंचन। माली कृष्ण जैसे एक पक्षी होती है अपने अंडे का सेवन करती है, ठीक वैसे ही हम लोगों को अपने भक्ति रूपी कृपा का हमें रक्षा करना चाहिए सब प्रकार से। समय बीतते जा रहा है, समय सब कुछ को खत्म कर डालेगा, लेकिन बाद में पछताने से क्या फायदा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि समय रहते ही होश में आ जाए, होश में आ जाए, नहीं तो बुढ़ापा वास्तव में कष्टदायक होता है। हम इतना प्रयास कर ले कि बुढ़ापा आते आते शरीर को छोड़ दे, नहीं तो शरीर हमें छोड़ देगा। अब डिसाइड करना है कि हम, आप देखे हो ना जवानी में चमड़ा जो होता है बिल्कुल हड्डी से सटा रहता है, और बुढ़ापे में छोड़ देता है, झूलने लगता है, छोड़ देता है। हम लोगों को ऐसे ही करना है। ये शरीर हाड़ मांस चमड़ा से बना हुआ है, इसको छोड़ना है समय का सदुपयोग कर करके। और साधन हमारे पास है, साधन हमारे पास है, लक्ष्य हमारे पास है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन का सदुपयोग न करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, साधन है भगवत भक्ति। अब न करें, इस देह के लिए रचे पचे रहे जो काम नहीं करेगा। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम अदयो में विशतमान सहाज हंस प्राण प्रयाण समये कफ बात पित्त। बुढ़ापा में कफ और बात और पित्त जिसको हम थूक देते हैं वो भी पहलवान बन जाता है। जवानी में तो आता नहीं है, बुढ़ापा में ही सब कुछ आता है। ये जाड़ा भी है ना, बूढ़े लोगों को ज्यादा परेशान करता है। मैं कहता हूं हमारे बिहार में कहावत है, वो जाड़ा कहता है बचवन के छुअम ना जवन का लघियन भाई, आ बुढ़वन के छोड़म ना कतनो ओढ़ियन रजाई। तो जाड़ा ऐसे कहता है कि बचवन के छुअम ना, जो बच्चे हैं उनके पास नहीं जाऊंगा, बच्चे हैं। जवन का लघियन भाई, जो जवान है हमारे भाई लगते हैं। और बुढ़वन के छोड़म ना, जो बूढ़े होंगे उनको नहीं छोड़ूंगा। कतनो ओढ़ियां रजाई, कितना भी रजाई ओढ़ो छोड़ने वाला नहीं है जाड़ा, समझ गए ना। हाँ सब जगह है जहां जाड़ा पड़ता है ना। अच्छा पता है ये कितना शिक्षाप्रद बात है, इसे शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए शिक्षा देने के लिए भगवान ये मौसम को भी भेजे हमारे पास। ये जाड़ा हमको शिक्षा दे रहा, भैया देखो बुढ़ापा आने से पहले क्या बन जाओ, एनेस्थीसिया ले लो। क्या डॉक्टर है ना, ऑपरेशन करने पर वो एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर ना, वो काटते रहो पता नहीं चलता है। तो भक्ति रूपी एनेस्थीसिया ले लोगे तो चाहे जाड़ा हो चाहे कुछ भी हो, शरीर सुन हो गया है पता ही नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। इसलिए समय का सदुपयोग करें सभी भक्त लोग, हम सब लोग, और जितना हो सके भजन में लगे रहें। ये जाड़ा गर्मी बरसात और देह के सुख दुख में पड़े रहेंगे, कई एक जन्म जन्मांतर तक पड़े रहें, अब इस जन्म को हम सार्थक करें भगवत भजन कर करके। तो यही हमारी परिस्थिति है कि हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है, हम सब लोग काल के वश में हैं, काल चला रहा है हम लोगों को, सांस ले रहे हैं समय के अनुसार। तो कहते हैं जब तक सांस तब तक आस, जब तक सांस चल रहा है भगवान का भजन करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इंद्र को कह रहे हैं कि भाई देखो हतोत्साहित मत हो, जब तक सांस तब तक आस, हतोत्साहित मत हो, उठाओ अपना वज्र, चलो मार डालो हमको, खत्म करो, उत्साहित कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी हमेशा उत्साहित रहना चाहिए भजन करने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है, सब लोग उठ रहे हैं जल्दी जल्दी। अरे मैं अभी तक बैठा हूं, तुम उठ रहे हो, ये मानने वाले नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।